अनुवाद श्री शुक्र स्वामी ने बताया, आप मैं तुम्हें वे सारे विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित के द्वारा पूछे जाने पर महर्षि ने उनसे कहा था, उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। तत्पर्य प्रत्येक पूछे गए प्रश्न का उत्तर यदि किसी अधिकारी विद्वान का उदाहरण देकर दिया जाता है तो उससे बुद्धिमानों की तुष्टि होती है। यहाँ तक कि न्यायालयों में भी यही विधि अपनाई जाती है। सर्वश्रेष्ठ वकील अपने मुकदमे को स्थापना के लिए बिना कोई कष्ट उठाए पूर्ववर्ती फैसले से साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यह परंपरा विधि कही जाती है और विद्वान अधिकारी इधर उधर के व्यर्थ तर्क न देकर इसका पालन करते हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादि गोविन्दः सर्वकारण कारणम्। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में उनका हाथ है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के अंतर्गत भगवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। शीर्षक 10वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इस अध्याय जिसमें आज का श्लोक अर्थात श्लोक जो हम अभी उसका पाठ किया, इस अध्याय का नाम है भगवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। तो कैसे भगवत सभी प्रश्नों का उत्तर है, आप क्या किस प्रकार का प्रसाद लिया, ये प्रश्न का उत्तर नहीं है श्रीमद् भागवत में। अनेक अनेक असंख्य प्रश्न है, तो कैसे भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है, किसी का सुझाव है तो कैसे यही संभव है। यही प्रश्न, आप क्या किस प्रकार का भोजन किया, कब क्या खाए, तो यही एक उदाहरण है, एक प्रश्न जिसका उत्तर नहीं है श्रीमद् भागवत में। तो कैसे भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है, आई कान हियर एनी थिंग एट ऑल, ठीक है नहीं उत्तर दूंगा, तो वो प्रश्न पूछना नहीं चाहिए। तो पहले समझना चाहिए किस प्रकार का प्रश्न पूछो, विशेषकर ये भगवत चर्चा शुद्ध गोस्वामी जैसे और शौनक आदि ऋषि जैसे महान महान बुद्धिमान और शुद्ध आत्मा लोग के बीच में होती है। तो जब शौनक ऋषि शुद्ध गोस्वामी से पूछे तो शौनक ऋषि शुद्ध गोस्वामी से नहीं पूछे तो हे महात्मा आप खाओ क्या खाए, तो उस प्रकार का प्रश्न नहीं थे। तो व्यर्थ प्रश्न पूछना का जरूर नहीं, तद्विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न है ना सेवया उपदेक्षंती थे ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शन। इस प्रसिद्ध श्लोक का तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मंतव्य करते हैं कि व्यर्थ प्रश्न पूछना का कोई जरूरत नहीं। तो बहुत से लोग साधु के पास आकर ऐसा प्रार्थना करते हैं कि हे महात्मा, मुझे बहुत डर ठीक नहीं, और बहुत सारे डॉक्टर के पास गए और वे कुछ नहीं कर पाए, तो आप मेरे लिए कुछ आशीर्वाद दो जिससे डर निकल न हो। तो इस प्रकार का प्रश्न या याचना साधु से नहीं पूछना है, ये याचना साधु से नहीं मांगना। एक उदाहरण है कि यदि हम सोना या चांदी खरीद लेंगे तो सब्जी बाजार जाने से क्या फायदा होगा? अगर हम सब्जी खरीदना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल बाजार जाने से तो नहीं मिलेगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक दुकान में कहेंगे कि मुझको 5 किलो आलू दो, तो इलेक्ट्रिक दुकान वाला क्या उत्तर देगा? तो वो सब्जी बाजार और 1 किलोमीटर सामने है, लेकिन मेरे पास पैसा है तो ले लो, पैसा देता हूं। आप व्यापारी है, आपका लाभ होगा, लेकिन मैं सब्जी नहीं बेचता, स्विच है, सॉकेट है, तार है, यही सब है, तो अगर लेने हो तो ले लो, पैसा देते। तो ऐसे ही दुनिया में अनेक सब्जी बेचने वाले हैं, अनेक डॉक्टर है, तो साधु के पास जाकर जो बाजार में मिलते हैं उसलिए नहीं मांगना। श्लोके तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। तो यदि जा जो ठीक में है साधु का आशीर्वाद से या जैसे तैसे हो किसी प्रकार से निकालना है तो वो श्रेय होगा, होगा कि नहीं? अच्छा होगा। राजा बहुत दर्द है पीठ में और जैसे तैसे हो दर्द तो नहीं है, तो वो व्यक्ति का कल्याण है, लेकिन वो पूर्ण कल्याण नहीं है, क्योंकि शरीर व्याधि मंदिरम और पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जाक्षरे शयन, बार बार शरीर एक या दूसरे प्रकार का शरीर धारण करना है, और शरीर के साथ शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना असंभवी है, आवश्यक। और वास्तव में वो शारीरिक सुख बहुत कम है और शारीरिक दुख बहुत ज्यादा होता है। तो हमारा एक गुरु भाई कही महीने के पहले कार एक्सीडेंट और अपना अनुभव से कहीं मायने के पश्चात बोले कि वो शारीरिक सुख जैसे आइसक्रीम खाना या सबसे बड़ा सुख क्या है इस भौतिक जगत में, सबसे बड़ा सुख क्या है शास्त्र क्या बोलते हैं? मैथुन, मैथुन सुख। तो वो हम कितने समय मैथुन सुख या आइसक्रीम सुख अनुभव कर सकते हैं? कौन अच्छा लगते हैं आइसक्रीम खाना? सब अच्छा लगते हैं, अच्छा स्वाद है, बहुत ठंड है, तो अगर मैं सबको आइसक्रीम दूंगा तो सब प्रसन्न होंगे। तो एक किलो लो और एक किलो लो, तीन किलो, चार किलो, पांच लो, फिर पेट फट जाएगा। तो हम वो सुख, वो क्या है वो सुख, जो इंद्रियों और इंद्रिय का विषय का संस्पर्श युक्ति से वो सुख होते, यही संस्पर्श जा होगा दुख योनि एवते आद्यंत पंथ कौंतेया न तेषु रमते बुद्धः। तो कितने मिनट हम आइसक्रीम सूप या मैथुन सूप या जो भी सूप अनुभव कर सकते, ज्यादा मिनट नहीं है, लेकिन दर्द का अनुभव, मेरा गुरु भाई श्याम चंद्र गुरु बोले कि खाली एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट नहीं था, उनका भास अनुभव है अभी तक हो रहा है, आठ महीने के पश्चात अभी तक दिन रात तीव्र दर्द अनुभव करते हैं, जितने भी इंजेक्शन देना है तो फिर भी बहुत बहुत दर्द अनुभव। तो ऐसा शरीर व्याधि मंदिर और एक उदाहरण है कि ये क्या बोलते हैं, नक, नक बोलते हैं, तो इस ये शरीर का एक अंश है, तो इससे कितना सुख मिल सकते हैं, इससे सुख प्राप्ति संभव है नहीं, लेकिन इससे बहुत दर्द मिल सकते हैं, अगर किसी का क्या बोलते हैं तो इनग्रोइंग, इनग्रोइंग नहीं हो, ऐसा है कि वो नाक जो त्वच के अंदर जाते हैं उससे बहुत दर्द होता है। तो ऐसे ही वो किडनी से कितना सुख मिल सकते, कुछ नहीं, किडनी, किडनी क्या बोलते हैं हिंदी में, सब किडनी बोलते हैं, तो अगर वो किडनी में पत्थर है, किसी का हुआ किडनी स्टोन, गॉल स्टोन आपका, तो मैं शाप नहीं देता हूं, किसी का ऐसा था, बहुत 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 दर्द होता उससे। तो इसलिए यही सब समझ गए कि यही संस्पर्श जब होगा दुख योनि एवते आद्यंत पंथ कौंतेया न तेषु रमते बुद्धः, कि ये पूरा जगत के प्राणियों इंद्रिय सुख के लिए सदैव व्यस्त रहते हैं, लेकिन वास्तव में ये इंद्रिय सुख का परिणाम होते हैं दुख, और इसलिए वो पीठ में दर्द है, साधु महात्मा मुझको आशीर्वाद दे जिससे उससे मैं गचूंगा। तो उस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान लोग साधु के पास नहीं जाते हैं, वे श्रेय उत्तमम इस प्रकार का प्रश्न करते हैं। तो कैसे मैं और केवल मैं नहीं और सब जगत के लोग, सब बद्ध जीवों सदैव चिरकाल के लिए सभी प्रकार का दुख से मुक्त हो सके, तो इस प्रकार का प्रश्न पूछना बुद्धिमान है, और खाली इस प्रकार का प्रश्न यथार्थ प्रश्न है, और इस प्रकार भागवत श्रीमद् भागवत सभी प्रश्नों का वास्तव उत्तर है। कितना खिड़की है उस सामने वो बिल्डिंग जो है कितना खिड़की है उसमें, तो ऐसा प्रश्न पूछने से श्रेय उत्तमम उत्तम कल्याण नहीं न, तो यही प्रश्न पूछना कि वो सभी भौतिक पदार्थों का मूल कारण क्या है। तो आधुनिक विज्ञान का प्रयास है इस भौतिक जगत का सभी पदार्थों और सभी वस्तुओं और सभी शक्तियों का देखना विश्लेषण करना, लेकिन वो आधुनिक वैज्ञानिकों तो इतना सा अनुसंधान करके भी और इतना तथ्य और ज्ञान आविष्कार करके भी तो शुरुआत से सही प्रश्न नहीं पूछे। तो सभी वस्तुओं का स्रोत क्या है ये वास्तव ज्ञानी विज्ञानी का यही प्रश्न पूछना चाहिए, और कि विज्ञान से हमें निर्णय किया या स्थिर किया कि जगत में बहुत नियम है, लॉज ऑफ ग्रेविटी, लॉज ऑफ मोशन इत्यादि इत्यादि, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये लॉ वो लॉ दूसरा लॉ ये सब लॉ, तो लॉ मेकर कौन है। एक्चुअली यही स्वाभाविक प्रश्न है ना? तो ये सब लॉ है, भौतिक प्रकृति के बहुत नियम है, तो नियम कैसे है? तो ये नियम के नियम करता है, और कि केमिस्ट्री में कि कैसे एक केमिकल दूसरा केमिकल से रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये सब केमिकल्स कहां से आया है, तो वही प्रश्न पूछना चाहिए। तो यदि हम सर्व कारण के कारण समझते तो फिर हम सब कुछ समझते। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्, हम सब कुछ समझते यदि हम मूल सभी वस्तुओं का मूल स्रोत सभी कारण के कारण और प्रकृति के सब नियम के नियम कर्ता यदि हम कृष्ण को समझते तो हम सब कुछ समझते, अर्थात ये भौतिक पदार्थों देखने से हम हमारा दुर्लभ और अनमोल मानव जन्म व्यर्थ काम में नहीं जानते कि ये केमिकल कैसे दूसरा केमिकल सही रिएक्ट करते हैं, तो ये सब अनुसंधान करने का कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान की भौतिक प्रकृति के अनुसार वो सब कुछ जो मानव समाज के लिए आवश्यक है, तो भगवान की कृपा से उनकी ही भौतिक प्रकृति के द्वारा तो सब कुछ भगवान हमको दिया। हमारा क्या क्या आवश्यकता है, खाना पीना सोना उसमें तो रोटी कपड़ा मकान ये सब आवश्यकता है, तो भगवान की कृपा से तो ये सब भारत जैसे देश में बिना कठिनाई से मिलते, तो शायद मार्सडल में या ग्रीनलैंड में ये सब प्राप्त करना कठिन है, लेकिन गुजरात में उदाहरण स्वरूप तो माटी या मिट्टी अच्छी है और फसल निकालना इतना कठिन नहीं है। फार्मर सब्यसाची दास कहो तो भगवान की दया से काफी जल है और मिट्टी अच्छी है और मकान तो क्या क्या चीज से बनाना है, लोकल इंग्रेडिएंट्स मिट्टी से बना ट्रेडिशनली और लकड़ी से, पत्थर पत्थर तो लोकली नहीं मिलते और घास थैच रूप धान धान का हाँ बैम्बू बांस उससे तो भगवान की दया से सब कुछ आसानी से मिलते है, लेकिन भगवान को भूल करके हम प्रयास करते हैं इस दुनिया को स्वर्ग जैसे बनाना, लेकिन वास्तव में क्या हुआ तो प्रगति का नाम में हम भगवान को भूल किया और नरक जैसे बना। ऐसे ये सब बिग बाजार ये सब हम सोचते और विचार करते हैं तो यही प्रगति है, लेकिन वास्तव प्रगति यही है कि अनासक्त से विषय प्राचीन भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च प्रगति मान जाती थी, वो सभी प्रकार का भौतिक विषय से अनासक्त। तो बड़े बड़े राजा थे लेकिन राजाओं भी शुद्ध आध्यात्मिक विचार में प्रगत वैरागी ब्राह्मणों को उनसे अर्थात राजाओं से उत्तम मान जाते थे। तो यही वैदिक संस्कृति थी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और शूद्र से निम्न ये सब जातीय थी, लेकिन सब मानते थे कि आध्यात्मिक प्रगति जीवन का वास्तव उद्देश्य है। तो इसलिए ये भगवत में वो सभी यथार्थ प्रश्नों के यथार्थ उत्तर मिलते हैं जो दूसरे शास्त्रों में इतना स्पष्ट रूप से नहीं है। तो उत्तर जो मिलते हैं जैसे उपनिषदों में चर्चा है तो आत्मा के बारे में ब्रह्म के बारे में, लेकिन श्रीमद् भागवत में तो आरंभ से परम सत्य का निदर्शन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्यं परं धीमहि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो श्रीमद् भागवत सभी प्रश्नों का यथार्थ उत्तर है। तो पहले कैसे प्रश्न कैसे पूछना, किस प्रकार का प्रश्न करना चाहिए, यही समझना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद चलते मेक्सिको या ऐसे दक्षिण अमेरिका में थे और कुछ तथाकथित फिलोसोफर दार्शनिक प्रभुपाद के पास आए थे और श्रील प्रभुपाद से पूछे कि वाई इज देयर एनीथिंग और वाई इज देयर एवरीथिंग, ऐसे ये सब वास्तु जो है जगत में है तो है क्यों। और श्रील प्रभुपाद उनको सुधार दिया, बोले कि यही प्रश्न तो ठीक प्रश्न है, ऐसे पूछना चाहिए तो सब सब वास्तु तो है वो प्रकट है, तो सब कुछ कहां से आते हैं, मूल कारण क्या है, तो यही प्रश्न पूछना चाहिए। क्यों सब कुछ है तो वो ही वास्तव प्रश्न नहीं है या यथार्थ प्रश्न नहीं है। तो सभी वस्तुओं का मूल स्रोत है क्या है, ऐसे पूछना चाहिए। हरे कृष्ण जशमती नंदन प्रभु, और कुछ कहेंगे इसके बारे में? और बहुत कुछ बहुत असंभव है, श्रील प्रभुपाद उनका आपने अनुभव बोले कि कोर्ट में अगर एक निपुण वकील है तो इतना सतर्क नहीं करके तो पहले हुआ केस से बोलते और फिर उसका सब काम होगा, तो ऐसे साधु जन तो इतना ज्यादा तर्क नहीं करते हैं, तो शास्त्र से कमांड देते हैं फिर निर्धारित होते हैं। आप कहिए माइक, दूसरा माइक नहीं कल था ना पास में, तो ये माइक है।